प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से यशाया नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्ययन को यशाया की पुस्तक उसके 53 अध्याय से आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे जीव तो सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहन जब आपके वचन को सुने, प्रत्येक के जीवन में आपका वचन कार्य करने पाए, प्रत्येक के जीवन से बोले और बातचीत करने पाए। हमारी प्रार्थना है हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, तनाव में हैं या किसी प्रकार की समस्या और उलझन में हैं, आप उन सबके साथ हो, उनकी सहायता करें, अपनी शांति प्रदान करें, अपने वचन के द्वारा बोले और बातचीत करें। इस समय के लिए फिर से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम आज अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे अध्याय 53 से। अध्याय 53 हमें प्रभु यीशु के क्रूसीकरण का संपूर्ण धर्मशास्त्र में सर्वाधिक सजीव विवरण देता है, क्योंकि परमेश्वर ने छोटा मार्ग नहीं अपनाया था, इसलिए उसे संतोष पाने से पहले कष्ट उठाने पड़े थे। तो आइए हम देखें उद्धारकर्ता के कष्ट। यशाया के पुस्तक 53 अध्याय उसके 1 पद में लिखा हुआ है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि यशाया शिकायत कर रहा है क्योंकि उसका संदेश ग्रहण नहीं किया गया था। परमेश्वर ने तो उस पर प्रकट किया, परंतु इसराइल ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। भविष्यद्वक्ताओं की सेवाओं में दुख की बस यही एक बात थी। अध्याय 6 में परमेश्वर ने यशाया को यह सेवा में नियुक्त किया था, तब उससे स्पष्ट कह दिया गया था कि वह परमेश्वर से जो संदेश प्राप्त करेगा उसे इसराइल स्वीकार नहीं करेगा, वह उस पर विश्वास नहीं करेगा और निश्चय ही यशाया को यही अनुभव भी प्राप्त हुआ। मेरे मित्रों, परमेश्वर के संदेशवाहकों ने भविष्यद्वक्ताओं का हार्दिक स्वागत नहीं किया था। भविष्यवक्ताओं के संदेश पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्हें पत्थरवाह किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सब शांति और सुरक्षा की चर्चा करते थे। दूसरे युद्ध की चर्चा करना तो किसी को पसंद भी नहीं था। उस युग में जनता की राय यह थी कि युद्धपोत समुद्र में डुबा दिए जाएं और हमें हथियारों से मुक्ति पा लेना चाहिए, क्योंकि राजनेताओं के अनुसार संसार प्रजातंत्र के लिए अब सुरक्षित था। उस समय भी परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता थे जो खुल्लम खुल्ला कहते थे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि युद्ध तो होंगे और युद्धों की चर्चा सुनी जाएगी जब तक संसार में पाप, आधार्मिकता और बुराई है, जबकि वे युद्ध विरोधी थे। उनका कहना था कि युद्ध त्वचा रोग नहीं, युद्ध मन की उपज है, और उनकी बात सच सिद्ध हुई। जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो ऐसा हुआ। कुछ लोगों का कहना था कि प्रभु यीशु युद्ध विरोधी था, जिसके प्रतिवाद में वे कहते थे कि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि बलवंत मनुष्य अपने घर की सुरक्षा करता है। मुझे स्मरण है कि मेरा पास्टर, जिस कलीसिया में मैं जाता था, मेरे बाल्यकाल में ऐसा ही कहता था। वह परमेश्वर का निष्ठावान सेवक था। वह मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर को पसंद करता था। उसका संदेश प्रायः अस्वीकार्य था। वह जनमान्य नहीं था। वे नगर के मुक्त विचारक प्रचारकों को पसंद करते थे। आज समय ने सिद्ध कर दिया है कि वह सही था, और आज की घटनाएं स्पष्ट करती है कि वह मानव जाति का शत्रु नहीं, मित्र था। वह परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था जो यशाया के साथ कह सकता था, किसने हमारा संदेश सुना। मेरे प्रियो, आज भी भविष्यद्वाणी की पुकार हमें देर होने से पूर्व परमेश्वर के पास आने की पुकार देती है, परंतु मनुष्य भ्रम के पीछे भागा जा रहा है। मैं रेडियो प्रसारण द्वारा हमारी बाइबल शिक्षाओं से उत्पन्न प्रतिक्रियाओं को देखकर विभोर हो जाता हूँ, परंतु मुझे बार बार यह स्मरण होता है कि हम प्रभु यीशु को अस्वीकार करने वाले संसार में रहते हैं। हमारा कार्यक्रम अनेक रेडियो स्टेशनों द्वारा अस्वीकार किया गया है क्योंकि उन्हें हमारा कार्यक्रम अच्छा नहीं लगा। रेडियो प्रबंधक ने कहा है कि वह मेरे द्वारा प्रचार किया जाने वाला प्रभु यीशु का वचन स्वीकार नहीं करता है। उसने कहा कि हम क्या अधिक आनंद का संदेश नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मनुष्य अधिकाधिक उन्नति करता जा रहा है, और जैसा मैं प्रचार करता हूँ, वचन सुनाता हूँ, वैसी बुरी स्थिति अब है ही नहीं। इस प्रबंधक की बात और उसके जैसे अन्य मनुष्यों के विचारों से स्पष्ट होता है कि हम प्रभु यीशु को त्यागने वाले संसार में रहते हैं। हमें इसे स्वीकार करके आगे बढ़ते रहना है। हम अति प्रसन्न हैं कि हमारा प्रसारण माध्यम जैसा है वैसा ही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज अनेक भविष्यवाणी की पुकार हमें प्रभु यीशु के पास बुलाती है, परंतु फिर भी बहुमत यही सुझाता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। पौलुस कहता है कि नाश होने वालों के लिए सुसमाचार प्रचार मूर्खता का काम है। मेरे प्रियो, सार्वजनिक विचारों की अभिव्यक्ति से हमें यह समझ में आता है कि बहुत से लोगों के लिए क्रूस की चर्चा करना मूर्खता की बात है। मैं मानता हूं कि मूर्खता के प्रचार की आज कमी नहीं है, और मैं यह कहकर क्षमा नहीं मांगूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि वे क्रूस के प्रचार को मूर्खता कहेंगे। यह संदेश उन लोगों को एक चुनौती देती है, क्योंकि उनके पास ऐसा सोचने का भी एक कारण है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि जांच आत्मिक रीति से होती है। क्या वे परमेश्वर को बात करने का अवसर प्रदान करेंगे? यह स्मरण योग्य है कि परमेश्वर कुछ करने के लिए मनुष्य की रीतियों पर नहीं चलता है। परमेश्वर बलवंत मनुष्य को चकित करने के लिए संसार की दुर्बल वस्तुओं को काम में लेता है, और बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए मूर्खों को काम में लेता है। हम बीमार होने पर डॉक्टर को बुलाते हैं तो हमें उससे यह आशा नहीं होती है कि वह देशी नुस्खे काम में ले। यद्यपि हमें उसकी दवाइयां समझ में ना आए, तो भी हम उन्हें बड़े विश्वास से खाते हैं। तो क्या हम परमेश्वर को वही सम्मान नहीं प्रदान कर सकते? हमें अब भी यशाया के साथ कहना होगा, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। मनुष्य परमेश्वर के सुसमाचार में विश्वास नहीं करता तो उसका एक कारण है। मनुष्य परमेश्वर को ऐसा मानता है कि वह कहीं दूर स्वर्ग में महिमामय सिंहासन पर विराजमान है। प्राचीन युग के लोग परमेश्वर को मनुष्य से अलग वास करता हुआ मानते थे। यूनानियों के देवता ओलिम्पस पर्वत पर वास करते थे। रोमियों के देवता जुपिटर बादलों में रहता था। अतः धार्मिक विचारों में यह मानना कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच आकर लज्जाजनक क्रूस पर मारा जाए संभव नहीं था, उनके लिए समझ से यह परे था। आधुनिक मानव के लिए यह पराजय थी। वे इसकी चिंता नहीं करते थे। परमेश्वर को कष्ट उठाना पड़े मनुष्य यह सोच भी नहीं सकता था। तथापि अध्याय 53 के बारे में मंत्र मुग्ध करने वाली एक विशेष बात है। इसमें हम मनुष्य को ऐसा कष्ट उठाते हुए देखते हैं जैसा किसी और ने कभी नहीं उठाया। मेरे मित्रों, यहां हम मनुष्य को ऐसी पीड़ा में देखते हैं जैसे स्त्री प्रसव पीड़ा में हो। वह उसके और उसके क्रूस की ओर बड़े ही विचित्र रूप से आकर्षित हो जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 32 पद में वह कहता है, मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचा चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। कष्ट की एक विशेष बात है, कष्ट हमें जोड़ता है। जब हम किसी गरीब प्राणी को पीड़ा में कराहता हुआ या रक्त रंजित देखते हैं तो हमारे मन स्वतः ही सहानुभूति से भर जाते हैं और उस दुर्भाग्यशाली मनुष्य की ओर आकर्षित होते हैं। हम कैसे न कैसे उसकी सहायता करना चाहते हैं किसी भी रूप में। यही कारण है कि रेड क्रॉस हमारे मन को बेधता है। हम युद्ध के घायलों के प्रति अत्यधिक सहानुभूति प्रकट करते हैं या इस शताब्दी के समय बर्बर व्यवहार से पीड़ितों के प्रति। दर्द हम सबको एक ही स्तर पर ले जाता है। कष्ट अर्थात दुखी मनुष्य, दुखी मानव जाति की क्षणभंगुर संतान का यह एक सामान्य बंधन है। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति कष्ट उठाता है उसको हम समझ सकते हैं। अतः मेरे साथ परमेश्वर के पुत्र के विचित्र कष्टों पर आप ध्यान दें। उसे हमारे ठंडे हृदयों को उसके बलिदान की गर्मी और उसके प्रेम की ज्योति की ओर आकर्षित होने दें। यशाया अपने पहले प्रश्न के साथ एक और प्रश्न पूछता है, यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है? परमेश्वर द्वारा आकाश और पृथ्वी की रचना को उसकी हस्तकला कहा गया है, जिसे हम भजन संहिता 19 उसके 1 पद में पाते हैं। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। मेरे प्रियो, यहां हस्तकला का अर्थ है उंगलियों से किया गया काम। डॉक्टर टी डेविड तालमगे कहा करते थे कि परमेश्वर ने भौतिक जगत की रचना में आधा भी परिश्रम नहीं किया था, अर्थात परमेश्वर को आकाश और पृथ्वी के रचनात्मक कार्यों में परिश्रम करना नहीं पड़ा था। उसने विश्राम किया तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह थक गया था। उसने सब काम पूरा कर दिया था, परंतु जब परमेश्वर ने मनुष्य का उद्धार किया तब उसे भुजबल की आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि उद्धार का कार्य उसका महान उत्तरदायित्व था। परमेश्वर के उद्धार के बारे में एक आपत्ति यह भी है कि वह निर्मोल है। इसका अर्थ यदि यह है कि मनुष्य के लिए यह निर्मोल है तो ठीक है, मनुष्य उसकी क्या कीमत देगा? उसके पास उद्धार पाने के लिए क्या है? मनुष्य के लिए उद्धार निर्मोल इसलिए है कि उसका मूल्य परमेश्वर ने चुकाया है। जी हाँ, उसे अपना भुजबल काम में लेना पड़ा। उसे क्रूस की मृत्यु के लिए अपने पुत्र को बलि करना पड़ा। उद्धार एक असीमित कार्य है जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। उद्धार निर्मोल परंतु मूल्य रहित नहीं है। अब हमारे सामने मनुष्य प्रभु यीशु है। हमें उसके मनुष्यत्व के आरंभ के बारे में भी कुछ कहा गया है, तो आइए हम पढ़ें। यशाया के पुस्तक 53 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु निर्जल भूमि से प्रस्फुटित जड़ था। इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु के जन्म के समय दाऊद का वंश राजगद्दी से काट दिया गया था। वे राजकुमारों में नहीं चरवाहों में थे। इसराइल देश रोम के दासत्व में था, वे स्वतंत्र नहीं थे। रोम की अपनी कोई महान सभ्यता भी नहीं थी, वे महान सभ्यताओं की नकल करते थे। उनकी सांस्कृतिक उपलब्धि आधी झूठी थी। नैतिकता का आधार नष्ट हो गया था। पुरुषार्थ और आदर्श नारित्व व्यविचार और भोग विलास में लीन था। इसराइल का धर्म शिथिल हो गया था। वे केवल दिखावे का धर्म निभा रहे थे। उनके मन नीरस और ठंडे पड़ गए थे। ऐसी स्थिति में मसीह का आगमन हुआ था। उसका आगमन एक कुलीन परिवार से हुआ था जो पतित युग के रोमी साम्राज्य के अधीनस्थ देश से काटा हुआ था। मानवता का सुंदरतम फूल लौकिक इतिहास के सर्वाधिक शुष्क स्थान एवं युग में खिला था। उस युग और पीढ़ी के लिए उसे उत्पन्न करना संभव नहीं था, परंतु वह आया क्योंकि वह परमेश्वर के पास से आया था। मेरे प्रियो, मैं एक हास्यजनक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि हम रेगिस्तान में विचरण कर रहे हैं जहां हरियाली का नाम भी नहीं है, कि हम अकस्मात ही एक स्थान पर बंद गोभी उगती हुई देखते हैं, तो क्या अचंभे की बात नहीं होगी? हम कहेंगे, यहां बंद गोभी कहां से उग रही है, यह तो चमत्कार है। इसी प्रकार प्रभु यीशु का आगमन था। वह नीरस शुष्क युग प्रभु यीशु को उत्पन्न नहीं कर सकता था। क्रम विकासवाद ने प्रभु यीशु का त्याग करने का प्रयास किया है। यदि वह कर सके तो क्यों ना करे। रोचक बात तो यह है कि वह भिन्न है, अतः वह निर्जल स्थान में फूटने वाली जड़ था। अब यशाया तुरंत ही हमारा ध्यान उसके कष्ट और क्रूस की मृत्यु पर आकर्षित करता है। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। इस पद के आधार पर कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु विकलांग और कुरूप था। कुछ तो यहां तक भी कहने का साहस करते हैं कि वह देखने में घृणित था। यह सच नहीं है, क्योंकि वह एक सिद्ध मनुष्य था। उसका शरीर सुंदर और सुडोल था। सुसमाचार वृत्तांतों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसकी कुरूपता की कल्पना की जाए। उसकी यह दशा क्रूस पर हुई थी। उसके कष्ट इतने घोर थे कि उसका रूप बिगड़ गया था। क्रूस कोई मनमोहक वस्तु नहीं थी, जैसा कि लोग आजकल क्रूस को घर में सजा के रखते हैं। वह तो देखने में भी भयानक होता था। आज के क्रूस तो आकर्षक बनाए जाते हैं, परंतु उनमें प्रभु यीशु के क्रूस का कुछ भी नहीं है। उसका क्रूस आकर्षक नहीं था। उसके कष्ट अवर्णित थे। उसकी मृत्यु अत्यधिक भयानक थी। उसने ऐसा कष्ट उठाया जो किसी मनुष्य ने कभी नहीं उठाया। क्रूस के कष्टों के बाद वह मनुष्य जैसा नहीं दिखता था, जैसा हमने पिछले अध्याय में देखा है, वह केवल घृणित देह लिए हुए दिख रहा था। अतः स्वाभाविक ही है कि हम जानना चाहेंगे कि उसकी मृत्यु भिन्न और भयानक क्यों थी। उसके कष्टों की गहराई का अर्थ क्या था कि उसके चेहरों को इतना बिगाड़ना पड़ा। यशाया 53 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यशाया को भय था कि हम इस तथ्य को भूल जाएंगे, इसलिए उसने 3 बार इसका उल्लेख किया है कि परमेश्वर ने उस पर हमारे पाप डाल दिए थे, आपके और मेरे, और परमेश्वर को यही भाया कि उसे, अर्थात प्रभु यीशु को, घायल करे। उसने उसे दुख दिया। जब हम यह समझते हैं कि एक सिद्ध पुरुष को ऐसा कष्ट देने वाला परमेश्वर पिता है, तो हमारा मन भय और घबराहट से भर जाता है। मेरे मित्रों, साफ बात तो यह है कि हम इसका भेद समझ नहीं पाते और पूछते हैं कि परमेश्वर को उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करना पड़ा। ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य उसने क्या अपराध किया था? एक पल क्रूस को आप देखें। प्रभु यीशु 6 घंटे क्रूस पर लटका हुआ था। वह आकाश और पृथ्वी के मध्य है। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक वह क्रूस पर है। पहले 3 घंटे मनुष्यों ने यथासंभव उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उसका ठड्ढा किया, उसकी निंदा की, उसके मुंह पर थूका, निर्दयता से उसे कठोर क्रूस पर कीलों से ठोका और बैठकर उसके मरने की प्रतीक्षा करने लगे। 3 घंटे क्रूस पर लटकने के बाद परमेश्वर ने 12 बजे सूरज पर अंधकार का पर्दा डाल दिया और संपूर्ण दृश्य अंधकार में डूब गया कि पिता और पुत्र के बीच होने वाली बातों को संसार ना देख पाए। प्रभु यीशु संसार के पापों के लिए बलि चढ़ गया परमेश्वर ने उसे पाप बलि बनाया, प्रभु यीशु को पाप बनाया गया। लिखा है कि वह जो निष्पाप था हमारे लिए पाप बनाया गया। यदि आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है तो आप क्रूस को देखें। यदि आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर पाप का दंड देगा तो उसके अतिप्रिय पुत्र को देखें जो पाप की पीड़ा को भोग रहा है। यदि हम ऐसे महान उद्धार को अस्वीकार करें तो हम कैसे गर्व करें कि हम बच जाएंगे। क्रूस वह वेदी था जहां हम परमेश्वर के मेमने को जगत के पाप उठाकर ले जाते हुए देख सकते हैं। वह अपने लिए नहीं किसी और के लिए मर रहा था, वह आपके और मेरे पापों के लिए मर रहा था, क्योंकि बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आज हम जितने भी लोग पृथ्वी पर पाए जाते हैं सब पापी हैं, क्योंकि सबने पाप किया है और उसकी सजा मृत्यु है। मुझे और आपको उसकी सजा मिलनी ही चाहिए, परंतु प्रभु यीशु ने हमारे सारे पापों का क्लेम और ब्लेम और सब कुछ अपने ऊपर में ले लिया ताकि वह मरे और हम बच जाएं। इसीलिए वह क्रूस पर चढ़ाया गया। मेरे मित्रों, यदि आज आप उस क्रूस की ओर देखते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि मेरे पापों के कारण प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ गया, मेरे लिए मर गया, और उससे आप अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तो निश्चय ही वह आपको क्षमा करता है और आपको उद्धार देता है। और कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है जिसके द्वारा आप उद्धार पा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ प्रभु यीशु ही आपके पापों के बदले में मरा और कोई दूसरा नहीं। मेरे प्रियो, आज इस अध्ययन के द्वारा हम इस बात को जान गए हैं कि प्रभु यीशु क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया। आज हम निर्णय लें और इस बात को स्वीकार करें कि प्रभु, मैं पापी हूं, मेरे पापों के कारण आप मरे हैं, मैं छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं छुटकारा पाना चाहती हूं, आप मेरी सहायता करें। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपको क्षमा करने के लिए तैयार है यदि आप उसके पास आते हैं। आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आप एक सही निर्णय के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
पाया है। है क्या, पल ही दो पल का, किसने है जाना, होगा क्या कल का।
घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी, यीशु बहार लाया है।
जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है,
जिंदगी
मेरी बदल गई।